आरव किसी काम से लाइफ केयर हॉस्पिटल आया हुआ था। वहां उसे अपने किसी बिजनेस राइवल की सर्जरी होने की बात चली तो वो ओटी के बाहर आ गया। जैसे ही आदित्य आहलूवालिया ने आरव को वहां देखा तो वो चौंक गया। उसने अपनी वाइफ की तरफ देखा। ये तो आरव खुराना है ना, ये यहाँ क्या कर रहा है? आदित्य की वाइफ ने सकबकाते हुए आरव की तरफ देखकर पूछा। आदित्य ने एक नज़र आरव को देखा और फिर अपनी वाइफ को दबी आवाज में कहा, आई डोंट नो शिवानी, ये यहाँ तक आया है तो ज़रूर कोई बड़ी बात होगी। बस मुझे डर इस बात का है कि ये हमारी फैमिली के सामने कोई तमाशा ना कर दे। हाँ, तुम्हारे पापा के काम ही कुछ ऐसे हैं। शुक्र मनाओ कि उनके कांड अब तक मीडिया और अपने घर वालों की नज़रों से बचे हुए हैं। अगर आरव खुराना यहाँ आ गया है तो ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं होगा। कुछ भी करके इसे घर वालों से मिलने से रोको, वरना डैडी जी सर्जरी से भले ही बच जाएं, लेकिन फैमिली और पुलिस से नहीं बच पाएंगे, शिवानी आरव की तरफ देखकर बोली। वहीं आदित्य और शिवानी को अपनी तरफ देखता पाकर आरव के फेस पर ईविल स्माइल थी। आरव ने कबीर से कहा, देखो तो ज़रा आहलूवालिया के बेटे बहू के चेहरे कैसे उड़ा हुआ है। वो तो होना ही था, बाप के कांड ही कुछ ऐसे हैं। ऊपर से मदद के लिए गया भी किसके पास? छवि सिंघानिया के पास, कबीर ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, जाने तो मैं ऐसे वैसे भी नहीं देता, पर छवि सिंघानिया के पास जाकर इसने मेरे गुस्से की आग में घी डाल दिया, बोलते हुए आरव ने ओटी की तरफ देखा और फिर कहा, जल्दी बाहर आओ डॉक्टर, तुम्हारे पेशेंट को मुझे फिर से बीमार करना है। आरव की बात खत्म ही हुई थी कि तभी ओटी की लाइट बंद हो गई। आहलूवालिया फैमिली खड़ी होकर डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी तो वहीं आरव की निगाहें भी बेसब्री से आयु का इंतजार कर रही थीं। कुछ ही देर में उनका इंतजार खत्म हो गया और लगभग 15 मिनट बाद डॉक्टर की टीम बाहर आ गई। अयान ने बाहर निकलते ही आदित्य आहलूवालिया से कहा, हमने उनका ट्यूमर निकाल दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो खतरे से बाहर है। लगभग 72 घंटे तक हमें उनके हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व करना होगा। इस बीच अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई तो सॉरी टू से हम उनकी जान नहीं बचा पाएंगे, बाकी टीम अपनी पूरी कोशिश करेगी। अयान की बात सुनकर आदित्य आहलूवालिया का चेहरा उतर गया। ये देखकर आयु को अच्छा नहीं लगा तो उसने उसे उम्मीद देते हुए कहा, डोंट वरी मिस्टर आहलूवालिया, ऐसे होने के चांसेस काफ़ी कम है। उनके बचने की होप 70% है और इतना हमारे लिए काफ़ी है, वो ठीक हो जाएंगे। वहीं आयु की बात सुनकर कबीर और आरव ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखा। आरव ने सार्कास्टिक वे में कहा, देखा तुमने, मैं जिसे मारने के सपने देख रहा हूँ ये उसी को बचाने की उम्मीद दे रही है। आप ज़्यादा मत सोचिए सर, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, वो एक डॉक्टर है, उसका काम है लोगों को उम्मीदें देना, कबीर ने आयु का पक्ष लेते हुए कहा। हाँ, दिख रहा है मुझे, पर अच्छा नहीं लग रहा, आरव ने सिर हिलाकर कहा और आयु की तरफ बढ़ने लगा। वहीं आयु ने आरव को कहाँ देखा तो वो भी हैरान थी। कल रात ही वो उसे जहान के फाइट क्लब में मिली थी और अब वो हॉस्पिटल आ गया था। अयान आहलूवालिया फैमिली से बात कर रहा था, इस बीच आयु वहां से निकलकर आयु की तरफ बढ़ने लगी। आयु आरव के पास जाकर धीमी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये हॉस्पिटल तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं जो तुमसे परमिशन लेकर यहाँ आना पड़े, आरव ने सार्कास्टिक वे में जवाब दिया। फिर वो आयु से बात करते हुए आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, वैसे कहना पड़ेगा तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। सूर्य प्रकाश आहलूवालिया, जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, उसकी जान बचा ली तुमने। ओह, तो तुम मिस्टर आहलूवालिया से मिलने आए थे और मैं कुछ और ही समझ बैठी, आयु को लगा आरव वहां उसके पीछे आया है। आयु की बात सुनकर आरव ने हल्का स्माइल करते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा और आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं डॉक्टर, तुम बिल्कुल ठीक समझ रही हो, मैं यहाँ इससे नहीं तुमसे मिलने ही आया था। आरव का जवाब सुनकर आयु उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। वो कुछ बोलती उससे पहले आरव ने अपने होंठ की तरफ इशारा करके कहा, कल रात तुमने ही मारा था ना, मुझे अब दर्द हो रहा है तो इलाज भी तुम ही करो, बोलो सबके सामने कपड़े निकालूं या? आरव की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि आयु ने अपना हाथ जल्दी से उसके मुंह पर रख दिया। उसने उसे डांटते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, हर बार ट्रीटमेंट के लिए कपड़े निकालने की जरूरत नहीं होती और तुम होठों पर कौन से कपड़े पहनकर घूमते हो, तुम चलो मेरे साथ, बोलते हुए आयु ने अपना हाथ आरव के होठों से हटाया और उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाने लगी। वहीं उन दोनों को साथ देखकर कबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आरव आयु के साथ बिजी था तो कबीर मिस्टर कपूर से बात करने के लिए उनके केबिन में चला गया। आखिर उन्हें वो काम भी तो करना था जिसके लिए वो यहाँ आए थे। आयु आरव को अपने केबिन में लेकर जा रही थी। वहां जाते हुए आयु ने रास्ते में कहा, तुम मेरा मजाक बनाना बंद करोगे, मुझे कोई शौक नहीं है किसी को बिना कपड़ों के देखने का, फिर भी देख लेती हो, आरव ने आयु को परेशान करने के लिए कहा, वो भी दो दो बार। आयु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही वो आयु के केबिन में पहुंचे, आयु ने उसे एक चेयर पर बिठाया और उसके पास खड़ी होकर उसके होंठ को छूकर चेक करने लगी। हल्का सा तो स्वेलिंग है, कोल्ड कंप्रेस देते तो ठीक हो जाता, आयु ने जवाब दिया। बोलते हुए उसका ध्यान आरव की तरफ गया जो एकटक उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। तुम मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो, बोलते हुए आयु तुरंत आरव से दूर हो गई। फिर वो आगे बोली, चलो अब सच सच बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए थे।
वो तो अभी सरप्राइज है, इसीलिए पहले रिलीव नहीं कर सकता। लेकिन तुम क्या कर रही थी? आरव ने पूछा। उसके चेहरे के भाव सख्त थे। आयू को उसकी बात समझ नहीं आई तो उसने हैरानी से कहा, क्या कर रही से तुम्हारा मतलब? जो मेरा काम है वही तो कर रही थी। तुमने देखा ना मुझे ओटी से निकलते हुए, वो हम मिस्टर आहलूवालिया की सर्जरी? आयू बोल रही थी तभी आरव ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, क्या जरूरत थी उस इंसान को बचाने की? वो जीना डिजर्व ही नहीं करता। और ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो कि कौन जीना डिजर्व करता है या मरना? आयू ने गुस्से में कहा। आयू की बातों ने आरव के गुस्से को और बढ़ा दिया। वो सर्द लहजे में बोला, औरों का मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंसान मरना ही डिजर्व करता है। तुमने इसे बचाकर अच्छा नहीं किया, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती मैं सुधारूंगा। उसे एक ऐसी जिंदगी दूंगा कि वो खुद दुआ मांगेगा कि इससे अच्छा वो मर जाता। आरव बोलते हुए भूल गया कि उसकी बातों का आयू पर क्या असर हो सकता है। आरव की बातें आयू को सिर्फ और सिर्फ अनु की याद दिला रही थी। अनुष्का का चेहरा आयू की आंखों के आगे घूमने लगा और वो अपने होश खो बैठी। आयू ने आरव का कॉलर पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर कहा, तो क्या तुम अपने फायदे के लिए किसी को भी मार डालोगे? मेरा फायदा? आयू सीरियस? आयू, पहली बार आरव के मुंह से आयू का नाम निकला था। तुम एक ऐसे आदमी का फेवर कर रही हो जिसे ठीक से जानती तक नहीं। ही इज अ ब्लडी रेपिस्ट, आरव चिल्ला कर बोला। आरव से पूरी बात जानने के बाद आयू को जैसे होश आया हो, वो गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। तुम ठीक हो? आरव ने पूछा, जिस पर आयू ने हाँ में सिर हिलाया। आरव ने आगे कहा, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था, पर तुम मुझे गलत समझ रही थी। मैं किसी को बेवजह क्यों मारूंगा? और मैंने कब उसे मारने का कहा? तुम किसी को वजह होते हुए भी नहीं मार सकते। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो पुलिस को सबूत दो, आयू ने उसे समझाने की कोशिश की। तुम्हें लगता है ऐसे इंसानों का पुलिस कुछ बिगाड़ सकती है? पुलिस और कानून को ये पॉकेट में लेकर घूमते हैं, आरव ने जवाब दिया।
आरव के बातें सुनकर आयू को एहसास हुआ उसने भी जहान को कुछ ऐसा ही कहा था जब उसने आरव से बदला लेने का कहा था। आयू को चुप पाकर आरव फिर बोला, तुम जो चाहो कर, आई विल डिस्ट्रॉय हिम। कहकर आरव वहां से जाने लगा तो आयू दौड़कर उसके सामने आ गई। पहले उसे ठीक तो हो जाने दो, बाद में जो करना है लेना। आई मीन, वो सब करना जरूरी है क्या? अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो तुम उन्हें मीडिया को दे दो, वो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, आयू उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। साइड हट जाओ, आ, आरव बोलते हुए रुकते गया। क्या? अभी तुमने मेरा नाम लिया ना, अब क्या हो गया, शर्मा रही है तुम्हें? बोलते हुए आयू ने उसे घूरते हुए देखा। आरव ने जवाब में सिर हिलाकर कहा, हाँ, क्योंकि काफी बच्चों जैसा नाम है, अब हट जाओ। आरव आयू को हटाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। आरव ने आयू को कमर से पकड़कर उठाया और अंदर चेयर पर ले जाकर बैठा दिया। आयू को बैठाने के बाद आरव वहां से जाने को हुआ तभी आयू ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़कर खींचा। आयू के अचानक खींचने पर आरव का बैलेंस बिगड़ गया और वो आयू के ऊपर था। क्या करी हो डॉक्टर, फिर कहोगे कि मैं तुम्हारे करीब आता रहता हूँ? आरव ने आयू की आंखों में देखकर कहा। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, और तुम मेरे ऊपर, चलो अब उठो भी वरना हम दोनों नीचे गिर जाएंगे। आयू अपने ऊपर से आरव को उठाने की कोशिश करने लगी तभी आरव का ध्यान उसके गले पर गया। आयू ने अब तक आरव का दिया हुआ पेंडेंट पहना था। उसे आयू के गले में देखकर आरव के फेस पर स्माइल आ गई। उसने आयू को कमर से पकड़ा और खुद के साथ अच्छे से लिफ्ट करके खड़ा हो गया। वैसे आज रात क्या कर रही हो तुम? फाइट क्लब की तो छुट्टी रहने वाली है क्योंकि आज सैटरडे है, आरव ने जाने से पहले पूछा। मेरे अपने प्लान्स हैं और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, आरव के पूछने से पहले ही आयू ने मना कर दिया। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें कहीं ले जाने के लिए तुम्हारा शेड्यूल पूछ रहा हूँ? मैं ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि पता तो चले तुम कब आलूवालिया से दूर होती हो और मुझे अपना काम करने का चांस मिलता है, आरव ने आई विंग करके जवाब दिया और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। आयू उसे जाते हुए घूर कर देख रही थी। वहीं आरव और आयू के बीच अभी जो भी हुआ उसे कोई अपने फोन में शूट कर रहा था जिससे वो दोनों ही अनजान थे।